नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकड़ ने गाजा के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए देश में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। काकड़ ने राष्ट्र के नाम पर एक संक्षिप्त संबोधन में देशवासियों से फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, सरकार फलस्तीन की गंभीर चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और हमारे फलस्तीनी भाइयों एवं बहनों के साथ एकजुटता दिखाने के मकसद से नए साल का जश्न मनाने के लिए आयोजित होने वाले हर तरह के आयोजन पर सख्त प्रतिबंध लगाती है। काकड़ ने कहा कि 7 अक्टूबर को इजरायली बमबारी शुरू होने के बाद से इजरायली सेना ने हिंसा और अन्याय की सभी सीमाएं लांघते हुए लगभग 9,000 बच्चों समेत 21,000 से अधिक फलस्तीनियों की जान ले ली। उन्होंने कहा, पूरा पाकिस्तान और मुस्लिम जगत गाजा एवं वेस्ट बैंक में निर्दोष बच्चों एवं निहत्थे फलस्तीनियों के नरसंहार से बेहद दुखी है। काकड़ों ने कहा कि पाकिस्तान ने फलस्तीन को 2 सहायता पैकेज भेजे हैं और तीसरा पैकेज तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फलस्तीन को समय पर सहायता प्रदान करने और गाजा में मौजूद घायलों को निकालने के लिए जॉर्डन एवं मिस्र के साथ बातचीत में लगा हुआ है। हमास के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आक्रामकता का आंशिक या स्थायी समापन बंधकों को मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, केवल युद्ध विराम से ही बंधकों की रिहाई संभव है। इस बीच इसराइल ने गाजा में अपने हमले तेज करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य हमास की कैद से सभी 100 बंधकों को मुक्त कराना है। इसराइल हमास युद्ध की वजह से पहले ही गाजा की 23 लाख आबादी का 85% हिस्सा विस्थापित हो चुका है, जिससे क्षेत्र का उत्तरी इलाका वीरान हो गया है। इसराइल के हवाई और जमीनी हमले बढ़ने के कारण दक्षिण में भी विस्थापन का खतरा बढ़ गया है। हमास द्वारा शासित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शहरों, कस्बों और शरणार्थी शिविरों पर इसराइल की बमबारी के दौरान बृहस्पतिवार को दर्जनों लोग मारे गए। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 20,000 से अधिक फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 2/3 बच्चे और महिलाएं हैं। चरमपंथी समूह को खत्म करने की इसराइल की प्रतिज्ञा के बावजूद हमास ने कड़ा प्रतिरोध किया है। हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इसराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हो गई। इसमें ज्यादातर आम नागरिक हैं। इसके अलावा हमास ने 240 लोगों को बंधक भी बना लिया था। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बृहस्पतिवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ युद्ध के अगले कदम को लेकर चर्चा की। इस दौरान ऑस्टिन ने गाजा के नागरिकों की रक्षा करने और मानवीय सहायता में तेजी लाने के महत्व पर जोर दिया। ये वार्ता उस वक्त हुई है जब इजरायली गांव किबुत्ज ने एक अमेरिकी कनाडाई इजरायली महिला की मौत की घोषणा की। माना जाता है कि महिला को बंधक बना लिया गया था। उसके पति को हाल ही में मृत घोषित किया गया था। मायने की डेमोक्रेटिक सचिव ने पूर्व सदस्यीय डोनाल्ड ट्रंप को संविधान के विद्रोह संबंधी उपबंध के तहत राष्ट्रपति पद के लिए प्रांत के प्राइमरी निर्वाचन से बाहर कर दिया है। शेन्ना बेल्लोस इस तरह की एकतरफा कार्यवाही करने वाली पहली चुनाव अधिकारी बन गई हैं। इस बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करने वाला है कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए पात्र रहेंगे या नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रदेश सचिव शेन्ना बेल्लोस के इस फैसले से पहले इस माह के प्रारंभ में कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत वहां निर्वाचन से बाहर कर दिया था। बहरहाल इस फैसले पर तब तक के लिए रोक है जब तक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला न कर ले कि ट्रंप गृह युद्धकालीन इस प्रावधान के तहत चुनाव से वंचित किए जा सकते हैं या नहीं। ये प्रावधान विद्रोह में शामिल व्यक्ति को किसी पद पर आसीन होने से रोकता है। ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान दल ने कहा है कि वो बेल्लोस के फैसले को मायने की प्रांतीय अदालत में चुनौती देगा। अमेरिकी सेना का X-37B अंतरिक्ष विमान बृहस्पतिवार को एक और गुप्त मिशन के लिए रवाना हुआ। माना जा रहा है कि यह मिशन अगले कम से कम 2 वर्ष तक चलेगा। पिछले कुछ मिशन की तरह ही छोटे स्पेस शटल जैसा दिखने वाला ये विमान कई खुफिया मिशन को अंजाम देगा। तकनीकी समस्याओं के कारण विमान ने निर्धारित समय से 2 सप्ताह से अधिक की देरी के बाद उड़ान भरी। इसमें कोई अंतरिक्ष यात्री सवार नहीं है। SpaceX के फॉल्कन हेवी रॉकेट ने इस विमान के साथ बृहस्पतिवार रात नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। अमेरिका का यह विमान 2010 से उड़ान भर रहा है और यह इसकी 7वीं उड़ान है। इससे पहले X-37B तकरीबन 2.5 वर्ष अंतरिक्ष में रहा था और यह इसका अब तक का सबसे लंबी अवधि का मिशन था। हालांकि स्पेस फोर्स के अधिकारियों ने यह जानकारी नहीं दी कि इस बार विमान कितने समय तक अंतरिक्ष में रहेगा। बोइंग द्वारा निर्मित X-37B नासा के सेवानिवृत्त अंतरिक्ष शटल जैसा दिखता है, इसमें किसी अंतरिक्ष यात्री की आवश्यकता नहीं होती। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।